वेश करे एक रूप कुलक्षणी मन खोटे कुड़ियार फिर के पाने ना चले हुकम करे कावार मन मुख कर्म कमावणे जीव तो हागण तन सिगार तेजे कंत नावे नित नित होई खुआर फिर का मैल न पावे ना दिसे करवार त्रिक जीवन दुहागणी मुट्ठी दूजे पाई कलर केरी कंद जियो एनिस किर टै पाई बिन सब दे सुख ना थिए फिर बिन दुख न जाई मुद्दे फिर बिन क्या सिगार दर कर टोई ना लहे न दरगे झूठ खुआर गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करता मंतन सोपे कंत क्यों सब दे तरे व्यार बिना वे किने न पाया देखे हृदय विचार नानक सासु आलियो सुलखनी जी रावी सिरजनहार आप सुजान न भूल रही सच्चा वट किसान पहला तरती साध के सच नाम दे दान नवनी उपजे नाम एक करम पवे निशान गुर को जान न जानी क्या तिस चज अचार अंधले नाम विसारिया मन मुख अंध गुवार आवण जान न चुकई मर जन्मे होई खुआर चंदन मोल अनाया कंगू मांग संदूर त्योहा चंदन बहु तना पाना नाल कपूर जी तन कंत न पावई ता सब डंबर कूड़ सब रस भोगण बादे सब सिंगार विकार जब लग शब्द न पेदिए क्यों सो है गुरु द्वार नानक तन सुहागणी जिन से नाल प्यार
गुरु नमे श्री गुरुदेव नमे दास दोनों हाथ जोड़ के संगत दे चरणा च मथा टेकते हुए अपने गुनाह की माफी लई अरदास बेनती करता है। ओ गुनाह जो करोड़ों जन्मां तो मैं कट्ठे करी बैठा हाँ संगत की समर्था है बख्शन की बख्शन की कृपालता करो संगत दे बख्शे नूं गुरु साहब भी बख्श देते हैं।
वेस करे रूप कुलक्षणी मन खोटे कुड़िया
वेस करे कुरूप कुलक्षणी मन खोटे कुड़ियार वेस करना श्रृंगार कौन कर रहा है कुरूप जिस दे अंदर कोई गुण नहीं गुरु साहब उपदेश करते ने कुलक्षणी है कुल नू नाश करन वाले लक्षणा नू धारण कर दी है कौन जड़ी कुरूपता हो करके वेश श्रृंगार कर दी है कारण की है मन खोटा कुड़ियार क्यों क्योंकि मन खोटा है खोट का की भाव है जड़ी चीज ना चले असि कहने खोटा है सिक्का क्यों क्योंकि चलता नहीं इस करके खोटा है रूहानियत दे विच मन खोटे कुड़ियार कूड़े नू कठा करना कूड़े का भाव है झूठ झूठ नू कठा कर रहा है इस करके एक खोटा है रूहानियत दे इस भाव नू गुरु साहब आज दे इस मजमून दे विच जिसनू गुरु साहबा ने दुहागन कह करके पुकारिया है इस जगत दे विच दुहागन किसनू किया जाता है इस शब्द दे विच दोनों ही गल्लां बिल्कुल बराबर चलदियां हन एक पासे दुहागन दे करैक्टर नू गुण नू उजागर किया जाता है और दूसरे पासे इस दी तुलना की जाती है ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇਪਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਹਾਗਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਆਗਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਦੀ ਏ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਭੂਤ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਸਰਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਧਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਸਾਖ ਵਿਛ ਗਈ, ਚੌਪੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾ ਖੁਦ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਨ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਹੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੂੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਔਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਲਪਨ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਸੀ, ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਭਾਵ ਆ ਜਾਏ पर मैं पूरण रहंदा है, मैं सुख दा ओ सागर है, जिसनु कोई दुख लगदा नहीं, उनु प्राप्त कर लेना ही सुख है। तो नहीं दा जो पाव है, इच्छा कदों आई, जदो कि अधूरापन आया, यानी कि दूसरे खिलाड़ी दा मैं हंकार दे प्रगट होंदे ही इच्छा जागृत हो गई, यानी मन बुद्धि और इंद्रियां ए अधूरिया ने, इना दे विच ही इच्छा ने प्रवेश किया कि मैनू इस वस्तु की लोड़ है, इस संबंध की लोड़ है। यानी कि जड़ी इच्छा, यानी कि असी गल की कि मैं सुखी होना चाहता हाँ, है तो इच्छा होगी और मैं निश्चित हो गया, और ए जड़ी इच्छा जागृत की गई, एने बाद दे विच प्रवेश किया, मैं दे अंदर कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने आप दे विच पूर्ण है, अनंत गुणा दा स्वामी है, उस दे उपर काल दा दूसरे इस गुण दा मैं दा हंकार दा कोई प्रभाव नहीं, कोई जमा घटा नहीं, उसकी कोई अवस्था नहीं, वो हर अवस्था दे विच, हर अभाव दे विच अपने आप दे विच पूर्ण और निश्चित है। यही अज दा मजबून है जड़ा गुरु साहब स्पष्ट कर रहे ने। बड़े ध्यान दे नाल असी गहरे भाव दे विच इस नूं सरवण करना है, ता ही जा करके ए मजबून सानू समझ आएगा और असी इस दा फायदा चुक सकांगे। यानी कि जड़ी इच्छा जागृत हुई, इच्छा बाद विच आई है, किस तरीके दे नाल कारण रूप दे विच प्रकाश पहले तो मौजूद सी इस आत्मा दा, इस गुण दा, उस परमात्मा दे अंश दा, और उस प्रकाश दे विच जदों भी असी इस अख दे नाल, इस इंद्री दे नाल जो भी वस्तु देखदे आ, ओ बाद दे विच प्रगट होंदी है मन और बुद्धि दे जरिए। यानी कि मन और बुद्धि दे विच प्रवेश किसने कीता, इस इंद्री दे जरिए जड़ा दृष्टि पटल दे उपर जड़ी पिक्चर यानी कि फोटो बनाई गई, ते उस तो पहले विचार करना है कि मैं उस तो पहले भी सी, मैं बाद विच भी सी, और जदों इस वस्तु इच्छा खत्म हो जाएगी तद भी मैं रहेगा। यानी कि प्रवेश किसने कीता, प्रकाश पहले तो मौजूद सी, वस्तु ने बाद दे विच प्रवेश कीता। यानी कि मन बुद्धि दे विच जड़ी भी वस्तु या इच्छा पैदा हुई है, ए बाद विच हुई है, ए उस तो पहले ही मौजूद सन। सो अज दा भाव जड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो जांदा कि कारण जड़ा है कर्ता दे रूप दे विच पहले ही इस जगत दे विच व्याप्त है। असी समझदे हां कि ए बाद दे विच आंदा है, असी परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहुंदे हां, ते नारायण ने अपने उपदेश दे विच की दित्ता है, इस जीवात्मा नूं ब्रह्म नूं दित्ता सी कि भाई मैं कारण रूप दे विच पहले तो ही इस जगत दे विच विद्वान हां, और मैं कदे भी बाद विच प्रवेश नहीं करदा, और अपनी जगह तो कदी हिलदा भी नहीं, और प्रवेश कीते बिना, अपने जगह तो हिले बिना मैं इस संसार दा कार व्यवहार चलांदा वां। यानी कि कर्ता कारण दे रूप दे विच पहले तो ही मौजूद है, इच्छा बाद विच पैदा हुई, और जदों असीं इह कहिंदे आं कि मैं सुखी होना चाहुंदा वां, तो सानू असल दे विच इस मैं रूपी सुख का पता ही नहीं है, खोज ही नहीं कीती, सानू उस दे प्रति कोई ख्याल ही नहीं है, असी इच्छा रूपी सुख दी तलाश कर रहे हैं, और उसी नूं इकट्ठा करके यह सोच रहे हैं कि मैं सुखी हो जावांगा। सुखी क्यों है? क्योंकि दुख नहीं है। दुखी क्यों है? क्योंकि सुख नहीं है। यानी कि सुख दे अंदर दुख पहले तो ही मौजूद है। सुख दा अंत की है? दुखी होना। जिस भी संयोग वियोग दुई कार चलावे लेखे आवे पार, कर्मा अनुसार लेखे अनुसार ए संयोग और वियोग, यानी कि मिलना और विछड़ जाना, मिलने नु सुख और विछड़ने नु दुख किया जाता है, और जदों भी कोई वस्तु या संबंध सानू मिलता है संयोग कर्मा अनुसार, असी अपने आप नु मैं सुखी समझण लग जाता है, और याद रखना जदों असी सुखी होंदे हां ते साडे पुन सरण लग जांदे ने, और उसका अंत की है? दुख। क्योंकि वस्तु और संबंध ने मिट जाना है, ए जगत जड़ा है, चाहे चंद सूरज तारे ने, चाहे संबंध ने, जो कुछ भी वस्तु मन बुद्धि और इंद्रिया दे नाल दृष्टि गोचर है, असी महसूस कर रहे हैं, ओ परले दे विच जा रही है, और परले महापरले दे विच खत्म हो रही है, हर पल हर कड़ी विनाश हो रहा है। यानी कि जिस नूं असी सुख समझ रहे हैं उसका अंत जड़ा है दुख ही दुख है, और दुख यानी वियोग होने दे बाद संयोग कदू होएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर अगर संयोग हो गया तो इसकी गुरु साहब कहते हैं कि पूरी गारंटी है कि वियोग जरूर होएगा। अगर तेरा जन्म होया तो तू अपनी मां तो जरूर बिछड़ेगा, अगर तू बच्चा मांग रहा तो एक कड़ी हो भी आएगी कि बच्चे ने तेनू छड़ के चला जाना। यानी कि यह गल पक्की है कि संयोग का अंत वियोग है, और वियोग होने के बाद दोबारा तो तेनू मनुखा जन्म मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के मजबून नु सरवण कर लो कि बिल्कुल स्पष्ट मजबून है कि असी सुख किदे विच लभ रहे हैं, कुछ सुख किसनु समझ रहे हैं, यानी कि इच्छा नू जड़ी की बात दे विच इस प्रकाश दे विच जो कुछ भी दृष्टि गोचर होया और उस दे विच कदी भी इस जीवात्मा नू सुख प्राप्त हो सकता ही नहीं। इनू गुरु साहब एक और उदाहरण दे रहे ने, बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। एक बच्चा जड़ा है अपनी मां दे कोल जा करके गुड़ मंगदा, कहंदा है मां मैनू गुड़ चाहिदा है, मिठा है, स्वाद लगदा है, मैनू गुड़ खाण नू दे। मां कहंदी है बेटा गुड़ घर दे विच नहीं है, तू इंज कर ग्वार लै जा, जाके बनिए कोलो दे के तो गुड़ ले आ और अपना स्वाद पूरा कर ला। बच्चा दौड़िया होया जांदा अपने बनिए कोल ते जाके उसनू ग्वार देंदा, बनिया की करदा तोल के ग्वार रख लैंदा और तोल के गुड़ उसनू दे देंदा है। गुड़ नू चटदा पिया है बच्चा, बड़े प्यार दे नाल चटी जा रहा है और चटदे ही चटदा अंदरों अंदर बड़ा ही प्रसन्न है कि मैं ते बनिए नू मूर्ख बना आया। किस तरीके दे नाल बना आया, ग्वार जड़ा है वह भोजन किसका है, जानवरों का। मैं जानवरों का भोजन देख के इंसान का भोजन यानी कि गुड़ ले आया वा, यह बनिया मूर्ख है, इसनू तो पता ही नहीं, और बड़े स्वाद नाल उस गुड़ नू चटी जा रहा, अपने आप नू महान समझ रहा है, यह कोशिश कर रहा है कि मैं उच्चा सौदा कर आया वा, बनिया नू घाटा पा आया वा। और दूसरे पासे बनिए का ख्याल किया जाए, बनिया किसनू कहा जाता, यानी कि सस्ता लैना और महंगा वेचना, यानी कि सस्ता लैके महंगा वेचण दे विच दा जिहड़ा मजबून है वह बनिए की मंजिल है। ना उसनू गवार दे नाल मतलब है ते ना उसनू गुड़ दे नाल मतलब है, वध ते उसने देना नहीं। बेईमान बेशक हो जावे, यानी कि कट तोल दे बेईमानी कर लवे, वह एक अलग मजबून है, पर वध देण तो रहा पर उसका मतलब दोनों विच ही नहीं है। यानी कि कार व्यवहार पूरा कर रहा, बड़े ध्यान दे नाल तोल के लै भी रहा और दे भी रहा है, पर उसनू ना ग्वार दे नाल मतलब है ते ना गुड़ दे नाल मतलब है। उसकी मंजिल केड़ी है, उसका ख्याल कित्थे है, उसका ख्याल है तन नू कमाना, तन दे उपर मंजिल है। यानी कि बच्चा यह समझ रहा है कि मैं उसनू मूर्ख बना रहा, पर बनिया अपने व्यवहार दे विच पूरा साबित होया, उसने तन नू हासिल कर रहा कार व्यवहार करते हुए। ठीक यही मजबून है सुहागण का और दुहागण का। सुहागण कौन है? बनिया सुहागण है। क्यों? क्योंकि उसने इस संसार का कार व्यवहार करते हुए अपनी मंजिल नू यानी कि तन नू हासिल कर लिया, सारा कुछ किया उसने, यानी कि गुड़ कितना ही मिठा सीगा उसने दे दिता, पर उसका लालच स्वार्थ नहीं किया, अपना व्यापार पूरा करके अपनी मंजिल नू प्राप्त कर लिया। हुण बच्चा जड़ा है स्वाद दे विच अहंकार दे विच इच्छा नू पूरण करन वास्ते गुड़ नू चट्टी जा रहा और यह कह रहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हां। ठीक उस तरीके दे नाल साडे बहुत सारे बंदे मौजूद हैं और इस जगत दे विच जड़े गुरु दे बहुत ही नजदीक रहिंदे ने, इसी कार्य व्यवहार दे विच फस के रह गए ने। कारण की सीगा कि इच्छा जागृत हो गई, संबंध चाहिदा है या वस्तुआं चाहिदियां ने, उन्हां नू चट रहा बच्चा बड़े प्यार दे नाल और आने वाली फरियादा नू उन्हां अथवां दी तरफ नजर नहीं मारदा जिन्हां दे प्रति गुरु साहबां ने उपदेश कीता सी कि बेटा तू परहेज करना है। यानी कि वह तो यह समझ रहे कि यह परहेज का हुक्म उसनू सुनाया गया है, मेरे वास्ते नहीं है, उन्हें परहेज किया नहीं, वह चट्टी जा रहा है। किसनू चट रहा है? नौ द्वारा नू चट रहा है। गुरु साहब पिछले सत्संग स्पष्ट कर चुके ने कि यह नौ द्वारा की तरफ जरा विचार करके देखो, थोड़ा जा ख्याल करो, अनंत काल तो इन्हों नौ द्वारा दे विचों गंध निकल रहा अनंत काल तो, और जब तक असि इन्हों जामिया दे विच पिंजरिया दे विच आवांगे इन्हों द्वारा दे विचों गंध निकलता ही रहना, और जदों भी असी इस पिंजरे दे विच आंदे हां इन्हों द्वारा नू साफ करन लग जांदे हां। मनुखे जन्म का उदाहरण है कि नौ द्वारा ने विचार करके देखो, नौ दे नौ द्वार हर वक्त गंध कढ़दे रहिंदे ने और असी दिने राती इस गंध नू पूजदे रहिंदे हां, पूंज पूंज के भी अनंत काल तो अज तक यह ना यह गंध खत्म होया और ना ही असी इस गंध नू चट्टण तो बाज आए हां, और जब तक असी इसका चट्टणा नहीं छड्डांगे ते उस परमात्मा की दसवें द्वार की प्राप्ति क्यों कर हो जाएगी और क्यों ऐसी जीवात्मा नू प्राप्ति होएगी जड़ी कि इस जगत दे विच इन्हां द्वारा दे विच यानी कि इस गंध नू साफ ही करन दे विच लग गई, जिस तरीके नाल बच्चा गुड़ चट रहा। तो दोनों भाव स्पष्ट हो गए, जिस तरह बनिया सुहागण हो गई उस तरीके दे नाल बच्चा जड़ा सीगा इस जगत दे विच गुरु साहब उपदेश कर रहे ना इहदा मजबून वह दुहागण कहलांदा है। ओ जीवात्मा जड़ी की मन की संगत दे नाल इना द्वारा नू चटदी रहिंदी है ओ इस जगत दे विच कुल नू नाश करन वाले लक्षणा नू धारण करके ਪੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਨੀਏ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੰਗ ਉਸ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਹਰ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਸੋਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਚੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਣਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਸਕੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਯਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਇਸਤਰੀ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਸੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੰਤ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਪਰਾਏ ਖਸਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੰਗਰੇਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੰਗਰੇਲੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਸ਼ਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੋਰੀ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਹਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲੱਖਣੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਸ ਦਾ ਸੂਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਈਰਸ਼ਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਲ ਐਸੀਆਂ ਐਸੇ ਬਚਨ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਤੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੱਲੇ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਭਰਮ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਈ, ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੇ, ਕਈ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ, पर बुले शाह नू गुरु दा दिता या उपदेश कि इधरो पुटना और इधर लाना इस किरिया नू ना कर सके इना सूए वेश नू तारण करे वालिया ने रस्ते दे विच ही बो लिया रस्ते दे विच ही सानू लुट लिया यानी कि असी अपने आप नू लुटन तो भी बचाना है और अपने घर दे रस्ते नू भी तय करना है और असी ए जड़िया दुहागन बनिया हुई वा इस दुहागन दे उना लक्षणा नू त्याग करके उना गुणा नू तारण करना जिन्हां नू तारण करन दे बाद ए जीवात्मा सदा लई जो है इस जगत दे विच यानी परमात्मा नू मिल करके सदा लई सुहागन बन जांदी है। सो आज दे उस शब्द दे विच गुरु साहब बड़े अच्छे तरीके नाल इस नू स्पष्ट कर रहे हैं।
फिर के पाणे ना चले हुक्म करे गवार,
फिर के पाणे ना चले हुक्म करे गवार, दो हिस्से ने इस तुका दे बिल्कुल स्पष्ट गल है, कोई भिन्न भेद नहीं, कोई छुपया नहीं। पीर कौन है? वह अकाल पुरख है। उसका भाणा की है कि जड़ा जन्म तैनू दिता है ना, यह दात है, अमानत है। यह अमानत किस दी है? उस अकाल पुरख की अमानत है और उसी दे उपर मिटानी है। और असी कर की रहे हैं? हुक्म करे गवार, हुक्म करन दे। हुक्म कौन कर रहा है? यानी कि पराया पुरुष हुक्म करता है और असी उस दे हुक्म दे अनुसार अपना ए चोला ए दात जड़ी है उस दे उपर कुर्बान कर देंदे हैं। ए दुहागन दा सब तो पहला लक्षण है कि जीवात्मा दुहागन कौन है इस जगत दे विच जड़ी उस पराए पुरुष दे विच आसक्त है और जिसने उसनू ए दात दिती है, ए मनुखा जन्म दिता है। किस वास्ते दिता सीगा? परमात्मा नू मिलन वास्ते, अपने अंतर दी मैल नू धोण वास्ते। क्या देवी देवते अपने अंदर दी मैल नू धो सकते ने? अगर धो सकते होंगे तो उन्हां दा अद्धा रस्ता था पहले ही तय हो गया सीगा। सृष्टि दे सिरमौर फिर ओही होंगे, मनुख ना होंदा। मनुख नू क्यों किया गया? क्योंकि मनुख दे जन्म दे विच आ करके ए जीवात्मा इस पराए पुरुष तो छुटकारा पा सकती है। देवी देवत्या दा खसम जड़ा ना ए मन रूपी काल उस तो बच नहीं सकते। एका माई जुक्त व्याई तीन चेले प्रवान, ए तीन चेले जड़े ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं ना, ए उस मन यानी के मन दा जो खसम पिता कौन है? ओ काल है। काल यानी कि ओ दूसरा खिलाड़ी जिस दी मैं करता अहंकार है उस तो बच नहीं सकते। तो मनुखे जन्म दे विच आ करके इस मेरी मैं तो छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है और उस पहले खिलाड़ी दी मैं यानी के करते नू प्राप्त करन लई इस जगत दे विच सोझी दिती जांदी है बुद्धि दा तत्व। यानी कि बुद्धि दिती इस करके गई सी कि तू भाणे दे अंदर रह। भाणा की सीगा? कि अपनी हस्ती मिटा दे उस पूरन सतगुरु दे उपर परमात्मा दी खातिर। क्यों? तू परमात्मा नू मिलन वास्ते ही इस जगत दे विच आया। पर असी कर की रहे हां? वस्तु और संबंधा दे विच चट रहे हां उस स्वाद नू गुड़ नू और उस दे विच की है? असी भाणे तो बाहर हो गए, भाणे तो बाहर हो गए और मन दे हुक्म दे विच अपनी हस्ती नू मिटा दिती। तो ए पहला गुण है इस दुहागण दा।
मन मुख कर्म कमावणे ज्यो दुहागण तन सीगा।
मन मुख कर्म दुहाग कमावणे ज्यो दुहागण। गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट करते ने कि मन मुखी जीव जदो मन नू खसम बना करके इस जगत दे विच किरिया नू अपनांदा है ते ओ किसी भी लेखे नहीं लगदे। किरिया ते दोनों ही कर रहे ने, यानी के दो खिलाड़ी खेड रहे ने और दोनों दे विच मैं दा भाव है और मैं दे अधीन ही कर्म या किरिया कीती जांदी है। बिना किरिया दे कोई भी पिंजरा यानी के चोला स्थिर हो सकदा ही नहीं। असी अगर इत्थे बैठे हां ते किसी ना किसी किरिया नू करके ही बैठे हां, यानी के स्थिर रहण वास्ते किरिया दी लोड़ है और उस दे भुगतान ले रूप दे विच ही इस जगत दे विच इस जीवात्मा नू फिर ए पिंजरा दे दिता जांदा। तो ए अगर असी पहला खिलाड़ी यानी के अकाल पुरख और उसका अंश उसकी ताकत और समर्था लेकर के इस जगत दे विच जो खिलाड़ी मौजूद है उसनू गुरु सतगुरु साजन मीत किसी भी लफ्ज नाल याद कर लो, लफ्जा दा फेर है। असी इस लफ्जा च नहीं फसना और लफ्जा दे विच कुछ रखिया भी नहीं होया, असी इन्हां लफ्जा तो बाहर निकलना। यानी कि उस खिलाड़ी दे उपर अगर असी उसके हुक्म दे अनुसार किरिया नू अपना लिया ते ओ ता साड़ी सार्थक हो गई। और अगर असी दूसरे खिलाड़ी यानी कि उसका अंश जो मन इस पिंजरे दे नाल दिता गया उसके अनुसार किरिया नू अपनाया ते कहंदे ने ओ दुहागण दा ए लक्षण है कि ओ जड़ी किरिया नू अपनाया उसका उसनू भुगतान देना पेगा। यानी कि मन रूपी मैं दी अपनाई गई किरिया का भुगतान इस जीवात्मा नू इस जगत विच लिया करके दुहागन सिद्ध करता है और करता दे रूप दे विच अकाल पुरुष दे प्राप्त करन वास्ते उस सतगुरु दे निर्देशानुसार अगर वो किरिया नू अपना लैंदा है तो उसकी अपनाई गई किरिया जो है इस जीवात्मा नू सदा लई सुहागण बना देंदी है।
सेजै कंत ना आवई नित नित होई खुआर।
हुण दो हिस्से ने इहदे च, सेजै कंत सेज ते कंत नहीं आ रहा, खसम नहीं आ रहा, बड़े शिंगार करके बैठी है, इंतजार कर रही है खसम दी, पर खसम आंदा ही कोई नहीं। कहंदे ने अगर खसम आया ही नहीं ते नित नित खुआर होंदी है, रोज शिंगार करदी है, पति दा इंतजार करदी है पर पति कोई नहीं आंदा, फिर खुआर होंदी है, यानी कि तड़फदी है पर उस नूं पति दी प्राप्ति नहीं होंदी। यानी कि सेजा हुण सेज केड़ी है, दसवां द्वार सेज दा है, ओ सेजा कंत ना आवई। हुण इत्थे कंत दा की भाव है? कंत है उस परमात्मा दा ओ गुण, यानी कि ओ प्रकाश और आवाज। और असी विचार करके देखो, अपा सारे ही अख बंद करके दुआगणा जिहड़ियां बैठ जांदियां ने अपने खसम दा इंतजार कर दियां, पर ओ खसम कदी आया? कदी नहीं आया। दो घंटे बैठो, दस घंटे बैठो, उठ के चले जांदे आ। कारण की सीगा? नित नित होई खुआर। ए खुआर होण दा कारण की है, वजह की है? मनमुखी करम, मन नू खसम बनाया है। साडा ख्याल किथे है? मन दे विच। हुण खुआर किस तरह करदा है? ए मन दे विकार ने, मन फसिया है इंद्रिया दे विच, और इंद्री जिस काट ते जांदी है स्वाद लाहण गुड़ चटण वास्ते, मन उहदे नाल घसिटदा फिरदा, और मन दे नाल ए जीवात्मा यानी कि स्त्री भी बंधी हुई है, ए भी घसिटदी हुई चली जांदी है, यानी कि तीनों ही दी मिट्टी पलीत कीती जा रही है। ए कहंदे ने नित नित खुआर होना, यानी कि सानू अपने खसम दी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि असी अपने पिर दे हुक्म नू कदी मनिया ही नहीं। हुक्म इको ही है, कोई लंबे चौड़े हुक्म नहीं है, इको ही हुक्म है, इधरों पुटना ते उधर लाना। अज तक असी इथों पुटिया नहीं ते अंदर लगाण किस नू रहे आ? सेजै कंत ना आवई नित नित होई खुआर। यही कारण है कि नाम और अमृत लैण छकण दे बाद भी असी रोज खुआर हो रही आ। क्यों? क्योंकि पराए खसम दे नाल रलियां मना रही आ सवेर तो लैके शाम तक।
फिर कमेहल ना पावई ना दिसे करबार।
फिर का महल ना पावे ना दिसे करबार। वैसे ते असी महलां दे विच बड़े उच्चे उच्चे महल बना रहे हां, बड़ियां गहरियां नीहां खोद रहे हां, और उसके बाद भी कहंदे ने घर बार दिखाई नहीं दिंदा। किहड़े घर दी गल कर रहे ने? इह दसवें द्वार ते ओह घर हैगा गुरु दा द्वार, गुरुद्वारा। सुषमना के घर राग सुन सुन मंडल लिवलाई। जिस जगह ते ओह परमात्मा दा गुण ओह खसम प्रगट हुंदा है ना, ओह सानू नजर नहीं आ रहा, नजर आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हां दे इस जगत दे विच बड़े गहरे महल बने ने ना, उन्हां नू उस घर दे विच, उस जगह दे विच, सचखंड दे विच कोई इट लाण भी नहीं देगा। कारण की सी? कि इत्थे वड्डे महल बने ने, नीहां बड़ियां गहरियां ने, और जिन्हां ने इस जगत दियां नीहां अपने हथी पट लिया ना, याद रखना ये महल कोई नहीं जे टाएगा, ये महल इस जीवात्मा नू खुद टाणे पैणगे। और नीहां जितनियां गहरियां सी बनाईयां ना, एक एक इट इस नी चो कढ़नी पेगी। जदों नीहां खोखलियां खाली हो जाणगियां, महल ढह पेगा ना, उस वेले जा करके इस जीवात्मा नू इजाजत मिलेगी कि सचखंड दे विच हां हुण आ करके तू हिट लगा सकदा। यानी कि अगर इस जगत दे विचों असी उजड़ांगे नहीं ते सचखंड दे विच वस ही नहीं सकदे। और अगर असी यह सोच के बैठे हां कुछ लफजा नू लै के अमृत पी के असी जाके सचखंड वस जावांगे, ते किसी ने जिस दो द्वारा चो निकलन नहीं देना, दसवें वड़न गुण देगा। यही कारण है कि असी इस जगत दे विच अपने महल पक्के कर रहे हां, और उस जगत दे विच सानू घर बार दी सोझी नहीं हुंदी। क्यों? क्योंकि इत्थे नीहां साडियां बड़ियां गहरियां ने। क्यों? क्योंकि अज पुत्र नहीं है, पुत्र मंगदे हां ते पोता चाहिदा, पोता ते पड़पोता चाहिदा, उसी दा इंतजाम कर रहे हैं सारियां नीहां ने। और ए नीहां पट्टे बगैर किसी ने हिट नहीं जे लाण देनी सचखंड।
त्रिग जीवन तो हागणी मुट्ठी दूजे पाई।
त्रिग जीवन दोहागणी मुठे दूजे पाई। कहंदे ने तिकार है ऐसे जन्म दे उपर, तिकार है उस जीवात्मा उपर जड़ी मनुखे जन्म दे विच आ करके पराए खसम दे नाल रंग रेलियां मना रही है, पराए पुरुष दी आसक्ति कर रही है,
जड़ वस्तुआ और संबंधा नू अतरक्त कर रही है। दूजा भाई इस जगत दे विच द्वैतता दा भाव की है, एकता है वह परमात्मा परमात्मा दे प्रति असक्त वैराग होना। वैरागी किण है और वैरागमन जी किसनू कहा गया? गुरु साहब स्पष्ट करते हैं जो जीवात्मा मनुष्य जन्म दे विच इस जगत दे विच जो कुछ भी दृष्टि गोचर है मन बुद्धि और इंद्रिया दे नाल उन्हां दी आसक्ति करती है, उन्हां नू देखती है, उन्हां नू सुनना चाहती है, उन्हां नू प्राप्त करना चाहती है, उन्हां नू कायम रखना चाहती है सिर्फ ईर्षा मान दे तहल आ करके। सब तो वड्डा अवगुण है मान। मान नू असी बहुत अच्छे तरीके नाल अगर श्रवण करिए ध्यान नाल इहदे गहरे उतरीए तो सानू पता चलेगा ये मान ही है जिस कारण इस जगत दे विच असी सारा कार व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये मान नक दी गल ना होवे तो इस जगत दे विच 80% कार व्यवहार ते वैसे ही समाप्त हो जाए। सिर्फ इस नक और मान दी खातर ही असी सब कुछ करते हैं। तो गुरु साहब स्पष्ट करते ने कि इस धिकार देंदे ने उस जन्म दे उपर कि 84 लाख जामिया दे बाद तैनू जन्म जिहड़ा दिता सीगा ओ किस वास्ते दिता सीगा और तू कर की रहा, यानी कि वस्तु और संबंधा दी जड़ी आसक्ति है उस जीवात्मा नू उस दुआगण नू धिकार दे रूप दे विच गुरु साहब उपदेश करदे।
कलर केरी कंद जो एनस
कलर केरी कंद जो एनस किर टह पाई। और जिस तरह कोई चूने दिया इटा दी कंद खड़ी कीती गई किन्नी भी पक्की होए कुछ समय बाद की होंदा वह पुरन लग जांदी है, उदे विच शोरा निकलन लग जांदा है। शोरा निकलदा निकलदा ये हालत हो जांदी है कि वह दीवार दिया इटा जड़िया कमजोर होंदिया ने दीवार टह पैंदी है। यही हालत है कि असि कितने ही पक्के हो जाइए कितना ही सिमरन करते हैं जो असि मां दे पेट दे विच होंदे आ ना एक टक एक लिव लगी होंदी है दसवें द्वार बैठे होंदे आ गुरु दे कोल थले उतरदे ही नहीं। क्यों? थले नरक है, गंध है, कष्ट है। जठर अग्नि की जड़ी तपश है 1600 जोड़ हड्डिया के बनते ने 2 महीने का समय वह ऐसा भयानक नरक है कि जीवात्मा थले नहीं जो उतरती। बिल्कुल दसवें द्वार एक टक नक रगड़ती है माफिया मंगती है कि मैनू इस नरक चो कढ इस पुठे नरक चो कढ इस गूमूत्र दियां थैलियां चो मैनू कढ ताकि मैं तेनू प्राप्त कर सका तेरे गुण का। बड़े नक रगड़ती है। वह कहंदे ने कितनी पक्की नींह बनाई सी पर कहंदे ने इस दे अंदर खोट है, केड़ी चूने की खोट है। क्यों? जब बाहर आंदे ही माया दे नाल लिपट गया, माया दे लिपट के ऐसा लिपटिया कि बचपन जवानी कदों चली गई ए तां पता ही नहीं लगा। गूढ़ी चटदा रहा कार व्यवहार करता रहा हुण बुढ़ापे दे भी जाके फरियाद करते ने साडे कोल चोकड़ी नहीं लगती साडे कोल भजन नहीं आंदा ते हुण कर भी की सकते हो हथ मलना सिख लो क्योंकि वही बाकी रह गए ने। ए ना होए कि अज जिसले काल आ करके वाल तो खिचे तो उसले कहिए सानू हथ मलने नहीं आंदे हथ मलन जोगे ते रह जाओ। इस करके गुरु साहब उपदेश कर रहे ने इस तुक दे विच बड़ा गहरा भाव है कि माया ही वो चूना है जिस दे विच लिपट करके ए सारिया इटा जनिया तू गर्भ जून दे विच एक लिव ला के उस परमात्मा दे अगे वादे कीते सर ए सारे पुर पुर के टह गई और अखीर कंध टह पई यानी कि आखिरी समा आ गया। पकड़ के काल केड़े पासो लै गया सारे रोंदे पिटदे ही रह गए छिण में पई पराई छिण दे विच एक पल दे विच ए सारिया वस्तुआ सारा जगत सारे संबंध पराए हो गए। क्या पति पत्नी क्या पिता पुत्र क्या मां बेटा कोई वस्तु लै लो कोई संबंध लै लो सिर्फ पलक चपकण दी देर है उसकी खबर नहीं ते इट्ठा किथे लगा रहे ने इस जगत दे विच नीयां गहरियां करन।
बिन सब दे सुख ना थीए फिर बिन दुख ना जाए।
बिन शब्द है बिना शब्द प्राप्त कीते सुख दी प्राप्ति नहीं और बिना पिर कौन है खसम अकाल पुरख। अकाल पुरख नु प्राप्त कीते बिना दुख नहीं जांदा यानी कि सुख और दुख दोनों एक ही ने। सुख आएगा तो दुख जाएगा तो सुख आएगा दोनों कट्ठे नहीं रह सकते। तो पहला शब्द की जड़ी गल की गई है शब्द का भाव है उस अंतर की आवाज और प्रकाश की तरफ परमात्मा दे मैं दे एक गुण जिसन गुरु साहब नाम कहंदे ने शब्द कहंदे ने हक दी आवाज कह करके उन्होंने पुकारिया। ए हक दी आवाज केड़ी है? ए परमात्मा दा एक गुण है। इस हक दी आवाज दे विचों एक प्रकाश निकलदा है इस प्रकाश और इस आवाज ने ही इस जड़ चेतन लोक नू आधार दे रखिया। कहंदे ने बिना शब्द सुख ना थीवे यानी कि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हुण सुख किस तरह हुण सुख का इशारा कर रहे ने सतगुरु असी दुखी क्यों आ मन करके ही असी इच्छा जाहिर की और इच्छा नु पूरण करन वास्ते वस्तु या संबंध के पिछे दौड़ रहे हैं। यानी कि कदों असी सुखी होवांगे जदो मन तो पिछा छुटेगा। वो मन तो पिछा कदों छुटेगा जदो ए इस शब्द नु हक दी आवाज नु सुनेगा, इस दे प्रकाश दे विच लीन होएगा, पौड़ी दर पौड़ी चढ़दा आया जदो अपने पिता यानी कि ब्रह्म दे विच जा करके लीन हो जाएगा, ता जा करके ए जीवात्मा दा पिछा छुटेगा और ए सुखी होएगी। और दूसरे पासे कहंदे ने बिना पीर दे खसम दे अकाल पुरुष नु प्राप्त कीते तेरा दुख नहीं जा सकदा। हुण पहला जिहड़ा सुख सी ओह सीगा मन तो छुटना, और इत्थे जिहड़ा सुख दी प्राप्ति है अकाल पुरुष दी कंत दी प्राप्ति है उस दुहागण लई किसले जिसले मन तो पिछा छुटा लिया, मन दे हुक्म चो निकल गई, गुरु दे हुक्म दे विच आ गई, और जदो पौड़ी दर पौड़ी चढ़दी हुई अकाल पुरख नू यानी के सचखंड दे विच प्रवेश करदी है उस सतनाम दी गोद दे विच जिसले उस नू बाकी दे चार सूरजां दी ताकत मिलदी है, उस वेले जा करके ओ इस दुख तो बचदी है। इत्थे दुख दा जिहड़ा भाव है ओ है जन्म और मरण दा। उस तो पहले बेशक पार ब्रह्म पहुंच जाओ, जन्म मरण तो नहीं पा सकते, बेशक एक नहीं सौ सतगुरां दे कोल जाके नाम या अमृत छक लो, आवागमन तो मुक्त नहीं हो सकते जब तक असी इस शब्द नू नहीं मिल लेंदे, इस नाम नू नहीं प्राप्त कर लेंदे। ओ नाम और शब्द कोई लफज नहीं है, कोई पानी दा कुंड नहीं है, ए ते सिर्फ शुद्ध उस परमात्मा दा गुण है, अनंत काल तो चलिया आ रहा जब दो सृष्टि रची है और मिलता सिर्फ मनुख जन्म दे विच है, और किसी भी जन्म दे विच इस नू प्राप्त किया नहीं जा सकता। बेशक ए जल और चेतन नू आधार देने वाला कारण रूप दे विच पहले तो ही विद्वान है और बाद विच भी इसी में रहना है, पर मिलेगा सिर्फ मनुखे जन्म दे विच, और मनुखे जन्म दे विच आ करके अगर जीवात्मा दुहागन ही बनी रही, कुल नू नाश करन वाले गुणा नू ही एकत्रित करती रही, तो विचार करो ए दुख तो कदों बचेगी। जिस नू इस दुख दे विच गया है कि इस दुख तो ताई बच सकता है जदो तू पीर नू प्राप्त कर ले, अकाल पुरख नू प्राप्त कर ले। यानी कि सतगुरु दा मजमून एक मीडिया है, साधन है, जरिया है, असि साधन तक ही रह जावांगे ते किवें काम चलेगा। कार मोटर जो कुछ भी है ए साधन है, मंजिल ते ओह है जिथे इस कार दे जरिए असि पहुंच जाना। अगर कार दे विच उलझ करके रह गए, कार दे विच ही रह गए, लफ्जां च ही रह गए, अमृत विच ही रह गए, ते असि उस सच्ची दात नू सच्चे शब्द नू प्राप्त करन दे काबिल बन सकते ही नहीं। यही कारण है कि असि उस कुंड दे कोल जा करके भी ए जीवात्मा अज तक भुखी और प्यासी है। अज तक इस दी भुख क्यों नहीं मिट्टी, क्योंकि ए इस दे मजबूर नू समझ ही नहीं सकी, आई सी सुहागण होने वास्ते पर ए दुहागण बनी बैठी है इस जगत दे।
मुंदे पीर बिन क्या सिगा, दर कर टोई नाल है, दरगे चूठ खुआ।
मुंदे पीर बिन क्या सिंगार, दरगे टोई नाल है। गुरु साहब स्पष्ट कर देने कि बिना खसम दे सारा शिंगार तेरा किसे काम दा नहीं है। यानी कि कितने भी वड्डे असि अपने आप नू परमार्थी घोषित कर दिए, कितने ही वड्डे सेवादार घोषित कर दिए, कितने ही अपने आप नू सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए, कहंदे ने इन्हां सारिया शिंगारा दे बावजूद तू दुआगण कलाएंगी इस जगत दे विच भी और दरगाह दे विच भी, तैनू कोई वड़न नहीं देगा, उत्थे भी तू खज्जल होएगा, उत्थे भी काल ने तेरे को हिसाब लाना। कारण की सीगा, क्योंकि तू जड़ा शिंगार कीता सीगा, ए शिंगार करन दे बाद भी तू उस सच्चे पीर नू पति नू खसम नू प्राप्त नहीं कीता। कितनी वड्डी गल इस तुक दे विच कही है कि अगर सानू अंतर दे विच जिस जगह ओ पीर खसम यानी के मौजूद है ओ नहीं मिलिया ना, ते बाहर दियां सारियां ही क्रिया अधूरिया ने, और एक क्रिया करके दो चार घंटे दी सेवा करके असि क्या समझ रहे हैं क्या सानू खसम मिल जाएगा। इस तरीके नाल कभी खसम किसी नू नहीं मिलिया। विचार करके देखो सेवा ते असि सारे ही करदे आ, जन्म तो ही शुरू हो जाती है, मां बच्चे की सेवा कर रही है, बच्चा वड्डा होके मां की कर रहा है, इसे तरीके दे नाल कार व्यवहार चलता है। यानी कि जड़ चेतन लोक दे विच वस्तु और संबंधा की संभाल जड़ी है, यह सब सेवा ही सेवा है। सेवा दे विच श्रेणी है उत्तम श्रेणी, यानी कि निचली श्रेणी और उत्तम श्रेणी। असी गुरु घर दे भी सेवा की, संगत की कुछ अच्छे ढंग की सेवा होगी, यानी कि सेवा ही सेवा रह गई, पर ओ सुरत और शब्द की सेवा जड़ी सी ओ असी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि नो द्वारा चो निकले ही नहीं तो सुरत शब्द की सेवा करेगी कदों। यानी कि असी उलझ करके ही रह गए इन्हां सेवा दे विच, कोई सेवा निचली है कोई उचली है, किसी का छोटा फल है किसी का वड्डा फल है। सात संगत जी काल दे मुंह च बैठे हैं, ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਕੈਦੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੈਸੀਆਂ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਧਾਰ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਾਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਬਨੀਆ ਛੱਡੇਗਾ ਕਾਲ ਬਨੀਏ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਖਾਲੀ ਨੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੜੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਤਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਸੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫੁੱਲ ਵਕਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਠੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਖੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਸਕਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਐਸੀ ਆਸਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕੈਸੀ ਭੈੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੀ ਪਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ
ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਰੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਗਣ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸੁਆਗਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਚੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 25% ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੌਥਾਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਕਿਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਪਿਤਾ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ
ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ
ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਧੂਰਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ